मल्लिका। मद्र में वर्णाश्रम धर्म की स्थापना होकर गणराज्य और सागर नगरी से हीनवर्ण की उच्छृंखलता दूर हो गई। द्विजकुलवर की मर्यादा पुनः स्थापित होने से देवी मल्लिका को भी संतोष हुआ। देवी ने अपने चतुस्साल में पुनः परिपाटी से कला के अनुष्ठान का आयोजन किया। कला का अनुष्ठान और परिपाटी स्थापित होने पर भी कला की वह सजीवता न आ सकी जो स्वयं उसके यौवन काल में और दिव्या मारुलिका शिष्यों के सहयोग से थी। देवी मल्लिका स्वयं यह अभाव अनुभव करती। कला के प्रति आदर अवश्य था परंतु आकर्षण नहीं। कला के विषय थे परंतु उसकी ग्राह्यता नहीं। सुंदर पिंजरा था परंतु सारिका निष्प्रभ थी। अनुभवी संगीताचार्य मारुत आपित और लोमक अपने वृद्ध कंठों से सज की शुद्ध लय उठाते। वृद्ध नट उदुम्बर अपने अष्टिपिंजर मात्र शरीर से अनेक कठिन दुसाध्य मुद्राओं का प्रदर्शन कर भाव बोधन करते। उन्हीं की भांति मर्मज्ञा वृद्धा नर्तकी की प्रथा थी। ऐसी कला का रस पाने के लिए ज्ञान प्रयत्न और संस्कार की आवश्यकता थी। जैसे समाधि और ध्यान का आनंद केवल अभ्यास से पाया जा सकता है, वह कला रूप और स्वर की सम्मोहक शक्ति से विगत कला की शुद्ध आत्मा थी। परंतु साधारण जन की दृष्टि में कला का निर्जीव उपचार मात्र। जन के लिए उस कला की अनुभूति उतनी ही दुस्साध्य थी जैसे शरीर के बंधन से मुक्त आत्मा का ज्ञान। रसिक समाज आदर तो मल्लिका का करता परंतु संतोष ढूंढता था वसुमित्रा और कुसुम सेना के यौवन के किलकिलते चतुस्सालों में। दूर देश से ज्ञानी अब भी विमर्श के लिए देवी मल्लिका की ही कलापीठ में पधारते थे। पृथ्वी के पराभव के पश्चात मारुलिका पश्चाताप से मल्लिका की सेवा में क्षमायाचना के लिए आई। मल्लिका ने उसे पुनः स्वीकार न किया जिसे कला की अपेक्षा विलास सुख ने आकर्षित किया। उसके हाथ में कला शुद्ध और सम्मानित नहीं रह सकती। मारुलिका से विरक्त होकर देवी का मन और भी व्यग्र हो उठा। धर्म की पुनः स्थापित व्यवस्था में कला की पीठ क्या यो ही उपेक्षित रह जाएगी। संपूर्ण जीवन के प्रयत्न और साधना से कला के लिए जिस सम्मान और शक्ति के अधिकार की स्थापना वे कर पाई थी क्या वह उनके शरीर के साथ ही लुप्त हो जाएगा। जनपद कल्याणी का आसन अनधिकारी और अपात्र अपमानित होगा। मल्लिका के लिए पीड़ा और नेत्रों के सम्मुख सर्वनाश होने के समान थी। देवी मल्लिका को अपने वैभव से मोह नहीं था। वह वैभव उनके विश्वास में कला के अधिष्ठात्री का सम्मान मात्र था। वह स्वयं कला की प्रतिरूप थी इसलिए सम्मान की अधिकारी नहीं थी। मल्लिका ने धन और द्रव्य का अर्जन न किया था। अर्जन किया था कला की सफलता के यश और कीर्ति का। द्रव्य उस यश और कीर्ति का छाया रूप था। देवी ने यौवन में केवल संतान अपनी कला की उत्तराधिकारी की आशा से धारण की थी। रूपवती कन्या का वरदान पाकर उन्होंने अपना शरीर देवी सरस्वती को अर्पण कर कला में शैथिल्य की आशंका से पुनः घर न धारण करने की प्रतिज्ञा कर ली थी। निष्ठुर देव ने उसकी संतान छीन ली परंतु देवी ने अपनी प्रतिज्ञा भंग न की। देव ने भक्त की उपेक्षा की परंतु भक्त की निष्ठा दृढ़ रही। देवी मल्लिका को देव के इस विधान में कुछ भी विपरीत न जान पड़ा। उन्होंने विचारा सरस्वती का उत्तराधिकार गर्भ में नहीं मुख से होता है। वैसे ही देव को उनका उत्तराधिकारी गर्भ की संतान में नहीं आत्मा की संतान गोपा तक्षशिला में सुलेखा मगन रत्नप्रभा माथुरापुरी में उनकी कीर्ति ध्वजा फहरा रही थी। दूर देश व्यापी कीर्ति से आकर्षित होकर कला के उद्गम तीर्थ सागर की यात्रा करने वाले अब यहाँ क्या पाएंगे यह सोच देवी मल्लिका का शरीर वेदना से सहर उठता। मारुलिका से उन्होंने आशा की थी परंतु वह अपात्र दिखी। देवी मल्लिका ने वीणापाणि देवी सरस्वती की कृपा में निष्ठा दृढ़ कर पुनः अपनी उत्तराधिकारिणी पाने का निश्चय किया। उन्होंने निश्चय किया कि उत्तराधिकारिणी की खोज में वे जम्बूद्वीप के सुदूर प्रदेशों और जनपदों की यात्रा करेंगी। दूर देश से आए साठ वाहों पर्यटकों और यात्रियों से अनेक प्रदेशों की कला साधिकाओं के विषय में जिज्ञासा करती रहती थी। तक्षशिला मालव मगध मथुरापुरी और दक्षिणापथ के संबंध में संवाद से जितना भी ज्ञातव्य था उन्होंने जान लिया था। सबसे अधिक कीर्ति उन्होंने रत्नप्रभा की शिष्य अंशुमाला की ही सुनी थी। देवी मल्लिका स्मरण करती रत्नप्रभा में प्रतिभा और निष्ठा दोनों ही थी परंतु चार वर्ष से उसकी कीर्ति विशेष उज्जवल हो उठी है। कारण है अंशुमाला जैसी शिष्या प्राप्त करने का सौभाग्य। ऐसी शिष्या पाने वाले गुरु से अधिक भाग्यशाली कौन होगा। ऐसी शिष्या जो गुरु के ज्ञान प्राप्त ज्ञान के स्फुलिंग को ज्योतिर्मयी ज्वाला का रूप दे सके। मगध से लौटते समय आचार्य रुद्रधीर के मथुरापुरी में निवास करने के अनुमान से मल्लिका ने उनसे अंशुमाला के विषय में जानना चाहा। आचार्य ने उस विषय में अधिक रुचि न दिखाई। इस विषय में आचार्य की मौन से मल्लिका ने अनुमान किया कि नीरस शुष्क प्रकृति आचार्य का कला के विषय में प्रवेश ही कितना है। जो भी हो वृद्धावस्था में स्वयं कष्ट कर वो अपने उत्तराधिकारी की खोज करेंगी। वृद्धावस्था में पुण्यार्थ तीर्थाटन के ब्याज से देवी मल्लिका अपने आसन की उत्तराधिकारिणी की खोज में अनेक तीर्थों प्रदेशों जनपदों और नगरों की यात्रा करती अनेक स्थानों के कलापीठों को देखती सूरसेन की ओर चली। जो जो वे मथुरापुरी के समीप पहुंच रही थी अंशुमाला की कीर्ति अधिक प्रखर हो रही थी। देवी मल्लिका को विश्वास था दत्तराज के धाम में उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। मद्र की जनपद कल्याणी कला के निष्ठात्री सागल की राजनट की देवी मल्लिका के आगमन के समाचार से मथुरापुरी आह्लाद और उत्साह से विलोड़ित हो वह चला। पूर्वानुमान पूर्वाभिमुख यमुना की प्रतिद्वंदिता में जनसर प्रवाह नगर के पश्चिम द्वार की ओर बह चला। देवी रत्नप्रिया प्रभा के प्रसाद से नगर के पश्चिम द्वार तक राजपथ कदली टोरनों कलश स्तंभों पाटकाओं आम जामुन के पत्तों के बंधनवाड़ों और पुष्पमालाओं से छा गया। भवनों अट्टालिकाओं और पन्नियों की भित्तियां द्वार और स्तंभ रंगीन कौशल पटों में छिप गए। राजपथ धान्य और यव की खीलों और लेखनों से बिछ गया। पथ का वातावरण अगर धूप लोबान और चंदन की धूम्र से धूमिल और सुवासित हो गया। अट्टालिकाओं के गवाक्षर अली ने दर्शक समूह की भार से चरमराने लगे। स्थान स्थान से वीणा और पिंडल पिपनियों कांस्य तालों मुर्जों और मृदंगों के स्वर उठने से आकाश मुखरित हो उठा। देवी रत्न प्रभा अंशुमाला और दूसरी शिष्याओं राजपुरुषों सामंतों और श्रेष्ठियों सहित गुरु देवी की अभ्यर्थना के लिए नगर द्वार पर उपस्थित थी। धूली की मेघों में मल्लिका के रथ की मकर चिन्हधारी पताका दिखाई देने पर स्वागत के वाद्य और शंख बज उठे। नवजन के जयघोष से कंपित हो गया। रत्न प्रभा ने देवी मल्लिका के रथ से उतरने पर स्वर्ण के आधार पर रखे 100 घृत दीपों से गुरुदेवी की आरती उतारी और रत्नों से भरा थाल भेंट किया। मुस्कान से रत्नों की भेंट अस्वीकार कर देवी ने उत्तर दिया, पुत्री कला का भक्त अन्य स्थान से प्रकाश पाकर द्युतिमान होने वाले रत्नों की इच्छा नहीं करता, वह स्वयं अभाव उत्पन्न करने वाले रत्नों का आदर करता है। आज मैं गुरु दक्षिणा में अथवा भिक्षा में वही रत्न मांगने आई हूँ। रत्न प्रभा का ग्रीवा विचार में झुक गया, उपस्थित विशिष्ट समाज स्तंभित रह गया। बुद्धिपौरी रत्न प्रभा ने मस्तक झुकाकर विनय की, माता शिष्या जो कुछ है शिष्या का जो कुछ है वह सब भगवती का दान है, जो आज्ञा हो। जानू पृथ्वी पर टिकाकर रत्न प्रभा ने सिर मल्लिका के चरणों पर रख दिया। मल्लिका ने मुक्ता से गुठे रत्न प्रभा के केशों पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया, सरस्वती की पुत्री तुम्हारे ज्ञान यश और वैभव का सौभाग्य अचल रहे। तुम्हारी गुरु अपनी शिष्या की शिष्या अंशुमाला को भिक्षा में मांगने आई है। मल्लिका के शब्द सुन रत्न प्रभा उठी, अपने पीछे खड़ी अंशुमाला को शिशु की भांति बाहों में लेकर मल्लिका के चरणों में बैठा कर हर्षातिरेक से गदगद स्वर में वह बोली, माता यह भी तुम्हारी ही है, कला का यह वरदान देने का समर्थ साक्षात सरस्वती के अतिरिक्त और किसमें है। चारों ओर मुक्त कंठों से जय जय की आवाज जयवाद और शंखनाद का तुमुल स्वर उठने लगा। उस कोलाहल के मध्य में अपने चरणों से अंशुमाला का मस्तक उठाकर मल्लिका ने चिरकाल में पूर्ण हुई अपनी शाद का मुख देखा। देवी की मल्लिका के नेत्र विस्मय से विस्मित रह गए, श्वास रुकने लगा और सहसा नेत्रों से जलधारा बह उठी। अंशुमाला को अत्यंत गूढ़ आलिंगन में हृदय पर समेट कर मल्लिका क्रंदन कर उठी, दिव्या दिव्या मेरी पुत्री मेरी आत्मा की संतान। रत्न प्रभा के लिए अंशुमाला का वियोग सर्वस्व त्याग ही था, परंतु जैसे कन्या की माता पुत्री को पतिगृह के लिए विदा करते समय मर्मान्तक वियोग को उत्सव का रूप लेती देती है, उसी प्रकार रत्न प्रभा ने अपनी सखी भगनी पुत्री अंशुमाला को उसके उज्ज्वल भविष्य के विश्वास से देवी मल्लिका के करों में समर्पण करने का आयोजन किया। नेत्रों से जल बहाती वह उसे नगर द्वार तक विदा देने गई। विराट समाज पथ के दोनों ओर एकत्र था। अंशु के वियोग से संपूर्ण मथुरापुरी दुखित थी, परंतु जम्बूद्वीप मात्र में अग्रगण्य कला की अधिष्ठात्री देवी मल्लिका को संतुष्ट कर पाने का गर्व भी उन्हें था। रसिक भक्तों और अनुरागियों द्वारा भेंट किए रत्नाभूषणों से अंशु का रथ भर गया। रत्न प्रभा मल्लिका के वेगवान रथों की उल्टी धूली के मेघों में अस्पष्ट होती जाती मल्लिका के रथ की मकर ध्वजा को नेत्रों पर हाथ रखे देखती थी, मानो मार्ग पर दूर होकर प्रतिक्षण छीन होते जाते उस बिंदु में ही उसके प्राण समाये थे। दृष्टि के असमर्थ हो जाने से उस बिंदु के अदृश्य हो जाने पर वह शिष्या मुक्तावली के कंधे का सहारा लिए निर्जीव जड़ के समान रह गई। समीप ही उपस्थित परम भट्टारक उपरी रवि शर्मा ने अपने हाथ के करुण स्पर्श से उसे सचेत कर स्वयं रथ पर बिठाया। रत्न प्रभा उत्तरीय में मुख छिपाए अपने प्रसाद की ओर लौटी।